मेरे अजीज नौजवान साथियों नमस्कार। आज 17 जनवरी 2018 है और आज के इस afis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। और दोस्तों आप सबके साथ ही मैं विशेष रूप से स्वागत करता हूं अपने एक नौजवान साथी का जिन्होंने एकेडमी की अभी कुछ दिनों के बाद 11 से 25 मार्च के बीच होने वाली क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन मित्र का नाम है के एम कल्पना जो हाथरस उत्तर प्रदेश से हैं। तो कल्पना आपका मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज के मुख्य विषय के रूप में हम जरा इसराइल के बारे में बात करेंगे जिसका वायदा कल मैंने आपसे किया था, लेकिन इससे पहले हम न्यूज के थोड़ी सी दूसरी चीजों को देख लेते हैं जो आज संख्या में काफी हैं। देखते हैं कि हम इसराइल तक किस सीमा तक पहुंच पाएंगे। न्यूज में आपने बाड़मेर रिफाइनरी के उद्घाटन की खबर पढ़ी होगी, सुनी भी होगी, देखी भी होगी, क्योंकि डीडी न्यूज पर इसके बारे में काफी लंबा आ रहा था और बड़ा खूबसूरत इंटरव्यू भी आया था जिसमें एनके सिंह और एक और भी विद्वान थे। रिफाइनरी के बारे में बहुत अच्छी बातें उन्होंने बताई थी। मित्रों खासकर अगर जो स्टूडेंट राजस्थान सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है कि वहां एक रिफाइनरी की शुरुआत की गई है, क्योंकि रिफाइनरी की शुरुआत का मतलब है कि वहां पूरी की पूरी उस आसपास के क्षेत्र में और खासकर वो पूरा क्षेत्र एक तरीके से रेगिस्तानी एरिया वाला क्षेत्र है काफी कुछ, तो ऐसे क्षेत्र में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना यानी कि उस क्षेत्र की पूरी जो आर्थिक स्थिति है उसमें एक जबरदस्त क्रांतिकारी परिवर्तन लाना। और वैसे भी रिफाइनरी भारत की कितनी बड़ी आवश्यकता है वो सब आप जानते हैं, तो इसे थोड़ा सा आप ध्यान से देख लेंगे। दोस्तों जो दूसरी खबर है वो है हज सब्सिडी में कटौती खत्म कर दिया गया है, कटौती नहीं हज सब्सिडी खत्म कर दी गई है। जो हज के लिए जाते थे मुस्लिम समुदाय के लोग, मुस्लिम धर्म के लोग, तो उन्हें सब्सिडी देती थी सरकार किराए पर, किराए में, तो अब वो खत्म कर दी गई है। लेकिन एक बहुत अच्छी बात यह है कि सब्सिडी के लिए जितना पैसा दिया जाता था, धन लगभग 700 करोड़ रुपए के आसपास है, वह अब शैक्षणिक सशक्तिकरण के लिए खर्च किया जाएगा। यानी कि यह नहीं कि सरकार के पास उतना पैसा बचेगा, उसी समुदाय अल्पसंख्यक वर्ग के लिए ही उनके एजुकेशन पे खर्च किया जाएगा और स्पेशली महिला एजुकेशन के लिए ये एक अच्छी बात है। और एक परिवर्तन ये भी किया गया है कि हज के लिए जब जो महिलाएं अप्लाई करती थी तो कुछ नियम थे जिसमें जरूरी था कि उनके साथ कोई पुरुष साथी भी हो, मतलब पुरुष भी हो, लेकिन अब बिना पुरुष के संग के भी जो मुस्लिम महिलाएं हैं वो हज की यात्रा पर जा सकेंगी, ये एक खबर है। तो एक सरकार की नीति किस तरीके से धीरे धीरे अधिक व्यावहारिक होती जा रही है, मूलभूत होती जा रही है, क्योंकि देखिए शैक्षणिक सशक्तिकरण तो मूलभूत आवश्यकता है, तो थोड़ा सा यह निर्णय उधर इंगित करता है। तो इस दृष्टि से भी आप लोग थोड़ा सा इसके बारे में इस इश्यू पर सोच सकते हैं। मित्रों एक आंकड़ा है जनधन खातों का कि अब उस पर 72,000 करोड़ रुपए उस खाते में इकट्ठे हो गए हैं, 72,000 करोड़ रुपए जनधन खाते में, ये एक डेटा है खासकर ग्रामीण क्षेत्रों का, चूंकि इसमें संकलन है, संग्रहण है, तो इस हिसाब से एक महत्वपूर्ण आंकड़ा है। और जनधन जो योजना है अपने आप में चूंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो स्टूडेंट्स को मेरा सजेशन है कि इससे संबंधित सूचनाओं और जो डेटा होंगे उस पर लगातार अपना ध्यान बनाए रखें और खुद को अपडेट करते चले। सिविल सर्विस की यह बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट है मित्रों खाप पंचायत। सुप्रीम कोर्ट ने आपने देखा कि ये कहा है कि जो अगर कोई बालिग है लड़का और लड़की और आपस में विवाह करना चाह रहे हैं तो खाप पंचायत उसमें दखल नहीं दे सकती। और खाप पंचायतों के बारे में आप जानते भी हैं, दो तीन एक साल पहले खाप पंचायत पर बकायदे मेंस में क्वेश्चन भी पूछा गया था। खाप पंचायत के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए, मैं बहुत ही संक्षिप्त में आपको बता दूं कि मित्रों जैसे किसी एक गोत्र के लोग हैं या एक जाति के लोग हैं, जब वो एक समूह बना लेते हैं, एक समुदाय के लोग एक समूह बना लेते हैं, तो उस समूह को आप खाप पंचायत कहते हैं। देखिए इसमें दो शब्द हैं, खाप और पंचायत। आप जानते हैं कि पंचायत तो हमारी बहुत ही प्राचीनतम ग्रामीण प्रशासनिक व्यवस्था रही है, पंचायतों के माध्यम से गांव के हमारे क्षेत्र अपना काम करते थे, तो जब कई पंचायतें मिलकर के एक बड़ा स्वरूप ले लेती है तो उसे कहा जाता है खाप, और जब कई खाप मिलकर के उससे भी बड़े स्वरूप में आ जाते हैं तो उसे कहा जाता है सर्व खाप। यानी कि आप एक तरह से एक प्राचीन भारत में जो गणराज्य की अवधारणा रही है वो गणराज्य की अवधारणा को ये खाप पंचायतें व्यक्त करती हैं, और हमारा जो गांव का जो सिस्टम रहा है, जो प्रशासनिक व्यवस्था हमारी रही है, और खासकर जनजाति के युग की या कबीलाई व्यवस्था के तहत कहीं न कहीं उसको रिफ्लेक्ट ये पंचायतें करती हैं। मित्रों, ये जो खाप पंचायतें हैं अब जो ज्यादातर चर्चा में आती हैं, जब भी खबरें होती देखेंगे आप पश्चिम उत्तर प्रदेश और हरियाणा यहां ज्यादा शक्तिशाली रूप में अभी भी वो फंक्शन कर रही हैं, और मूलतः जो जाट समुदाय है उनमें ये बहुत ही प्रोमिनेंटली परिचित है कि वो अपनी परंपराओं और अपनी मान्यताओं के आधार पर वो डिसीजंस देती हैं, और अगर कोई उसके विपरीत जाता है तो उन्हें सजाएं भी देती हैं और बकायदे वो सजाएं इंप्लीमेंट भी हो जाती हैं। जबकि सच ये है कि खाप पंचायत की अपनी कोई लीगलिटी नहीं है, कोई वैधानिक आधार नहीं है, ये बेसिकली सामाजिक संस्था है। तो ऐसी स्थिति में सीधे सीधे एक टकराव हो जाता है प्रशासन के साथ में और खाप पंचायत की अपने निर्णयों के साथ में। लेकिन आपको इसके साथ ही साथ ये भी जानना चाहिए कि ये केवल पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा तक सीमित नहीं है, बल्कि किसी न किसी रूप में ये आपको महाराष्ट्र में भी मिलेंगे, चेन्नई में भी मिलेंगे, मध्य प्रदेश में भी हैं, राजस्थान में भी हैं, पंजाब में हैं, सिंध में हैं, मुल्तान में हैं, वहां भी खाप पंचायतें अपने अलग अलग नाम से इस तरह के अपने कार्यों को अंजाम देती रहते हैं। मित्रों, इसके बाद न्यूज सुना आपने रायसीना संवाद। बेसिकली जब हम रायसीना की बात कहते हैं तो रायसीना हिल्स, जहां आज राष्ट्रपति भवन है, साउथ ब्लॉक, नॉर्थ ब्लॉक है, वो कभी रायसीना हिल्स के नाम से फेमस था। वो एक पहाड़ी सा है, आप न्यूज वगैरह में भी देखेंगे कि पहाड़ी चढ़ाव के बाद फिर आपको साउथ ब्लॉक, नॉर्थ ब्लॉक मिलेंगे और फिर सीधे राष्ट्रपति भवन दिखाई देता है। अगर आप दुर्गादास जी की हिस्ट्री की किताब पढ़ेंगे तो उसमें उन्होंने बताया है कि किस तरह से रायसीना हिल में काम शुरू हुआ जब राष्ट्रपति भवन वगैरह जब बनने शुरू हुए और वहां की क्या स्थिति थी, कनॉट प्लेस कैसे डेवलप हुआ। खैर, तो रायसीना संवाद का मतलब है बेसिकली डेली डायलॉग। दिल्ली डायलॉग ये बहुत ही नई शुरुआत है, 2016 से इसकी शुरुआत की गई है, और सिंगापुर में भी इसी तरह का एक डायलॉग होता है शांगरी ला डायलॉग के नाम से। शांगरी ला डायलॉग उसी पैटर्न पर भारत ने 2016 से इसकी शुरुआत की है। बेसिकली ये एक तरह का मल्टीलेटरल कॉन्फ्रेंस है, बहुपक्षीय संवाद सम्मेलन है। इसमें एकेडमिशियन बुलाए जाते हैं, पॉलिटिशियंस बुलाए जाते हैं, जर्नलिस्ट बुलाए जाते हैं, सोशल वर्कर बुलाए जाते हैं, हर क्षेत्र के लोग आते हैं, और खासकर दुनिया के सामने आज जो सबसे बड़ी चुनौतियां हैं उन विषयों पर बात करते हैं। प्री एग्जामिनेशन की दृष्टि से थोड़ा सा आपको ये जान लेना चाहिए कि एक इंडिपेंडेंट थिंक टैंक है, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन। ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन ये प्लस विदेश मंत्रालय, ये दोनों मिलकर रायसीना डायलॉग का आयोजन हर साल करते हैं। ये एनुअल इवेंट है। मित्रों, ये थोड़ी सी जानकारी है रायसीना डायलॉग के बारे में। अब मैं आता हूं इजराइल भारत के संबंधों के को लेकर, जो हमारा आज का मुख्य विषय है। मित्रों, ये मान करके चलिए कि ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसराइल के साथ भारत के संबंधों में एक यू टर्न अब दिखाई दे रहा है, खासकर पिछले साल से जब से हमारे प्रधानमंत्री इसराइल की यात्रा पर होकर आए हैं। सबसे पहली बात तो आपको ये समझ लेनी चाहिए कि आप नक्शे में इसराइल की लोकेशन को बहुत अच्छे तरीके से देख लें कि नक्शे में यह कहां पर है, क्योंकि जब तक आप नक्शे में इसराइल को लोकेट नहीं करेंगे तब तक इसराइल की समस्या और शक्ति, इन दोनों का अनुमान आप नहीं लगा सकते। इसराइल मिलेगा, वहीं आपको जेरूसलम मिलेगा, वहीं आपको बैरूत मिलेगा, साइप्रस मिलेंगे, सीरिया मिलेंगे, जॉर्डन मिलेंगे, ये सारे देशों के नाम आप सुनते हैं। इसके बाद फिर सऊदी अरब वगैरह देश आपको, बगदाद, इराक वगैरह दिखाई देंगे, टर्की वगैरह, मतलब इनके आसपास में इसराइल है। इसराइल और फिलिस्तीनी का संघर्ष वो अलग चल रहा है, वो आज हमारे इस का विषय नहीं हो सकता। इसराइल के बारे में मैं कुछ मोटी मोटी बातें आपसे करना चाहूंगा मित्रों, बाकी तो इसराइल पर ढेर सारे, कल भी मैंने कुछ आर्टिकल्स प्रोवाइड किए थे और आज भी मैं कुछ आर्टिकल प्रोवाइड कर रहा हूं। पहली बात तो यह है कि 1 करोड़ से भी कम आबादी का यह देश है, 85 लाख के करीब आबादी है। सोचिए कि कितनी कम आबादी है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि यह जो इज़राइल है, इसको लगातार अरब राष्ट्रों के विरोध का सामना करना पड़ता है। यानी कि नक्शे में आप देखेंगे कि उसके आसपास जो अरब राष्ट्र हैं, जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र राष्ट्र हैं, वो इज़राइल के विरोधी हैं। इसके बावजूद इज़राइल इतने शक्तिशाली रूप में टिका हुआ है। तो अब आपको दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट यहां दिखाई देंगे नक्शे के माध्यम से, जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। पहला, इज़राइल आज दुनिया में जो रक्षा तकनीकी है उसमें मतलब बहुत ही अच्छी स्थिति में है। रक्षा तकनीकी, गुप्तचर प्रणाली और साथ ही साथ आतंकवाद का विरोध, मतलब अपनी सुरक्षा के मामले में इज़राइल ने इतनी तरक्की की है कि लोग आश्चर्यचकित रह जाते हैं कि चारों तरफ यूं कह लीजिए कि अपने विरोधियों से घिरे होने के बावजूद इज़राइल इतनी पूरी सशक्तता के साथ खड़ा है और वहां आतंकवादी इस तरह की घटनाएं नहीं होती हैं। पहली बात। दूसरी बात, ज्यादातर यहां का एरिया रेगिस्तानी है, इसके बावजूद आप देखिए कि कृषि और जल प्रबंधन, इन दोनों के मामले में इसकी सफलताएं अद्भुत हैं। मतलब जो टपक सिंचाई प्रणाली, एक एक बूंद जो हमारे प्रधानमंत्री ने दिया ना कि एक बूंद का अधिकतम उपयोग, वो आपको इज़राइल में दिखाई देगा। एक एक बूंद पानी का उपयोग वो क्रॉप के लिए, फ्लावर्स के लिए वो करते हैं। सोचिए कि रेगिस्तान में उन्होंने एक तरह से नखलिस्तान बनाकर रख दिया है। मित्रों, ये दो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखिए, भारत ने अभी समझौते किए हैं, है ना, 9-8 जितने भी समझौते हुए हों। तो होता क्या है कि जब आपको 200 शब्दों में उत्तर लिखना होता है और पॉइंट्स बहुत अधिक है, आपको लगता है कि 200 शब्दों में आप इसे समेट नहीं पाएंगे, तब आप करेंगे क्या, आप किस तकनीक को अपनाएंगे? सिंपल सी टेक्निक होती है। टेक्निक ये होती है कि सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो टॉप प्रायोरिटी के हैं, उन्हें हम शुरू में लेते हैं। शुरू में लेने के बाद उन्हें थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देते हैं, उनकी थोड़ी सी व्याख्या कर देते हैं, या यूं कह लीजिए कि थोड़ी सी विस्तार से उनके बारे में चर्चा कर देते हैं, और बाकी जो पॉइंट्स होते हैं उन्हें फिर एक लाइन या दो लाइन में गिना करके हम छोड़ देते हैं, ताकि एग्जामिनर को यह पता लग जाए कि हाँ, इसके बारे में भी स्टूडेंट को ज्ञान है और जो बहुत ही महत्वपूर्ण है उसको उसने विस्तार से बता दिया है। तो जब हम भारत और इज़राइल के संबंधों के बारे में विचार करते हैं मित्रों, तो फिर हमें लगता है कि सुरक्षा व्यवस्था से हम इज़राइल से बहुत कुछ ले सकते हैं। गुप्तचर प्रणाली यानी कि सूचनाओं का आदान प्रदान, जो सुरक्षा से ही जुड़ी हुई बात है। और फिर रक्षा उपकरण, हथियार। आज भारत जो है इज़राइल का सब, मतलब यूं कह लीजिए कि रक्षा उपकरण हथियार मंगाने में सबसे बड़ा देश है, और यूं कह लीजिए कि सीधी सी बात कि सैन्य प्रौद्योगिकी में आज जो भारतीय सेना की ताकत जो बनी हुई है, बना हुआ है, वह देश इज़राइल है। और फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट जो है मित्रों, वो है कृषि व्यवस्था, कि भारत इज़राइल से कृषि तकनीकी में बहुत कुछ सीख सकता है, बहुत कुछ तकनीक ले सकता है। अगर आपने कल डीडी न्यूज को ध्यान से देखा हो तो आप देखिए कि कहां उसमें एक विकल दिखाया गया है जो समुद्र के खारे पानी को पीने के मीठे पानी में तब्दील करता कर देता है, और वो मूव करता रहता है। उसको आप कहीं भी ले जाइए, उसको आप मूव कर लीजिए, उसमें पानी समुद्र के किनारे खड़ा कर दीजिए, वहां के पानी को आप पीने का योग्य बना लीजिए, फिर आप कहीं चले जाइए, और आपको मालूम है कि पीने के पानी का कितना बड़ा संकट आगे उपस्थित होने वाला है। और साथ ही साथ जब कहीं बाढ़ आ जाती है या दूसरे किस्म की प्राकृतिक आपदाएं हो जाती हैं, तो इसके माध्यम से बड़े आराम से पानी, पीने के पानी के संकट को दूर किया जा सकता है। और भारत जहां आज भी 57% पॉपुलेशन कृषि पर आधारित हो, और ऐसी स्थिति में कि कृषि की आय बेहद कम हो, डेफिनेटली इज़राइल भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण देश सिद्ध हो सकता है, और साथ ही साथ इज़राइल के लिए भी भारत उतना ही महत्वपूर्ण राष्ट्र होगा। अब आप देखेंगे कि इज़राइल को भारत अभी तक क्यों इतना महत्व नहीं दे पाया था। इसके 2-3 इंपॉर्टेंट रीजन है, बस वो भर मैं आपसे चर्चा करके इसे खत्म करना चाहूंगा। मित्रों, पहली बात तो यह है कि शुरू में मैंने कहा कि जो अरब राष्ट्र हैं वो इज़राइल के विरोधी हैं, तो भारत को यह डर लगता था कि अगर हम इज़राइल से अपनी दोस्ती करेंगे तो ये जितने भी अरब राष्ट्र हैं, यानी कि जो मुस्लिम बहुल राष्ट्र हैं, वो भारत से नाराज हो जाएंगे, या यूं कह लीजिए कि भारत के प्रति थोड़ा सा विरोधी रुख रखेंगे, और भारत में अपने आप में मुस्लिम आबादी काफी है, तो उसका असर फिर यहां के मुस्लिम आबादी पर भी पड़ेगा, यानी कि यहां के मुस्लिम भी नाराज हो सकते हैं। दूसरी बात है, जो आपको मालूम है, भारत शुरू से गुटनिरपेक्ष आंदोलन का संस्थापक के साथ ही साथ लीडर रहा है और बहुत ही बड़ा प्रवक्ता रहा है। तो यह भी लगता था कि अगर वो इसराइल का समर्थन करने लगेगा तो फिर उसे अमेरिका के पक्ष में झुका हुआ रसिया के विरोधी या किसी एक गुट का मान लिया जाएगा, तो उससे भी जो हमारी गुट निरपेक्षता का जो सिद्धांत है उस पर कहीं न कहीं थोड़ी बहुत आंच आएगी। तो इन कारणों से भारत थोड़ा सा इसराइल से दूरी बना करके रखने की नीति पर चलता था, और उसे यह भी लगता था कि भारत और सोवियत संघ के संबंधों पर भी इससे प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि रूस हमारा बहुत निकट का मित्र उस समय रहा है। जबकि दूसरी ओर इसराइल शुरू से भारत का जबरदस्त समर्थक रहा है। ये मतलब एक बहुत विचित्र सी स्थिति है। खासकर इसराइल ने भारत को यूएनओ वगैरह में हमेशा अपना समर्थन दिया है, 1965 और खासकर 1971 में जब भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ तो इसराइल ने भारत का कूटनीतिक समर्थन किया, और कश्मीर के मामले को जब भी यूएनओ में पाकिस्तान ने उठाने की कोशिश की हमेशा इसराइल ने भारत का ही साथ दिया, और जो सैन्य सामग्री की जो आपूर्ति है वो इसराइल लगातार भारत को करता रहा है, जो हमारी सैन्य शक्ति का सबसे बड़ा एक आधार भी रहा है। तो मित्रों, अब वो स्थितियां सामान्य हो रही है, और खासकर 1992 में जब नरसिंह राव जी हमारे प्राइम मिनिस्टर थे तो उन्होंने सही मायने में इसराइल के साथ संबंध स्थापित करने की पहल की, और आज इतने सालों के बाद फिर अब ये जो दोनों राष्ट्र हैं इतने निकट आ गए हैं और अपने संबंधों को लगातार बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मित्रों, जो हाइलाइट्स थे भारत इजराइल संबंधों के, उसके बारे में मैंने कुछ बातें आपसे की हैं, और फिर अब तो अखबारों में ढेर सारी बातें इनके बारे में आ रही हैं, तो मैं चाहूंगा कि इन पर आप कुछ पॉइंट्स अच्छे से नोट कर लें। मित्रों, जहां तक न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स का सवाल है, मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, आप उसे देख लेंगे। अब ईमेल पर आता हूं, सभी ईमेल लिखने वाले मित्रों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, उन्हें धन्यवाद देता हूं, और उन्हीं में से कुछ मित्रों के नाम हैं मिथुल गुप्ता, ओम प्रकाश मुंड और अनिल कुमार सिंह कानपुर देहात उत्तर प्रदेश से। आप सबका भी बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। और मित्रों, इसी के साथ ही अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करने की इजाजत चाहूंगा। नमस्कार।